किं कल्पते माधुरक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदाप्यनन्ता कुक्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश
भूषिता
तवास्ति कुक्षे कियदा।
श्री प्रभुपाद की अनुवाद दोहराएंगे।
हे प्रभु
क्या कोई
माता
अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है कि उपाधि प्रदान कर सके? तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के में भाग एक अध्याय 14 इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अतः ब्रह्मा ने अपनी बराबरी किसी माता के गर्भ में स्थित एक शिशु से की है। यदि शिशु गर्भ के भीतर हाथ पैर पटकता है और वे माता के शरीर से छू जाते हैं तो क्या माता इसे शिशु का अपराध समझती है? निस्संदेह नहीं। इसी तरह ब्रह्मा भले ही महान पुरुष हो किंतु ना केवल ब्रह्मा अपितु हर वस्तु भगवान के उदर में स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यह शक्ति कार्यशील ना हो। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान है। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अथवा अन्य करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत स्थित है। इसलिए भगवान को माता माना जाता है और माता के गर्भ के भीतर स्थित प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। अच्छी माता कभी भी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले ही वह अपने पांवों से माता के शरीर पर पाद प्रहार क्यों ना करे।
ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्र जातं सहगण रघुनाथाशून्यवादी।
हरे कृष्णा, यह श्रीमद्भागवतम का प्रवचन श्री सुखमय कृष्ण प्रभु जी के द्वारा सुबह 8 बजे की कक्षा में भागवतम के दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जन्माष्टमी से पूर्व। हरे कृष्णा। डेट है 27/7/2006।
आप सबका हार्दिक स्वागत है एक सुबह के भागवत कक्षा में। अध्याय चल रहा है ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण की स्तुति। तो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी भगवान को ग्वाल बाल रूप में देख रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं दे रहे हैं और इनके हर एक प्रार्थना के श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल के श्लोक में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि कहां मैं अपने हाथ के साथ बालिशतों के बराबर एक शुद्ध प्राणी जो भौतिक प्रकृति समस्त भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरवा हूँ, कहाँ आपकी महिमा? आपके शरीर के रोम कुपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। और आज की प्रार्थना में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? तो ब्रह्मा जी अपनी तुलना
एक माता के गर्भ में पड़े शिशु के समान कर रहे हैं, और पिछले श्लोक में वो बता रहे हैं कि मैं कितना क्षुद्र हूं और आप कितने महान हैं। तो इस तरह की प्रार्थनाओं को बोला जाता है दैन्य बौद्धिक प्रार्थना, जिसमें जो प्रार्थी होता है वो जिसकी प्रार्थना कर रहा है दैन्य बौद्धिक अपनी दैन्यता को दिखा रहा है कि मैं कितना तुच्छ हूं और आप कितने महान हैं। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि मैं तो एक मल में पड़े हुए कीड़े से भी ज्यादा तुच्छ हूं, मेरा नाम मेरा स्मरण लेने से ही आपको सारे पाप के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो ये दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है, जो प्रार्थी है वो अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पिछले श्लोक में और आज के श्लोक में आगे वाले कुछ श्लोक में जो ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो दैन्य बौद्धिक प्रार्थनाएं हैं। दूसरी तरह की प्रार्थना होती है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना में जो प्रार्थी होता है वो अपना सब कुछ समर्पण करने की प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं आपको मैं सब कुछ समर्पित करना चाहता हूं और मेरा आपके प्रति आकर्षण और बढ़े। और तीसरी प्रार्थना होती है लालसामयी प्रार्थना, जिसमें प्रार्थी अपनी लालसा प्रकट करता है। जैसे प्रतिदिन हम तुलसी आरती में कहते हैं मोरा ए अभिलाष विलास कुंज दियोवास, तो इसमें हम लालसा प्रकट कर रहे हैं कि हम भगवान के संगी बने, भगवान के साथ हम भगवान के धाम में जाएं और उनकी लीला में प्रवेश कर सकें। तो इस तरह से तीन तरह की प्रार्थनाएं बताई गई हैं, और आज की जो प्रार्थना है वो दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है। और ब्रह्मा जी इस प्रार्थना में कह रहे हैं कि मैं एक तुच्छ जीव हूं, और कह रहे हैं कि आप अधोक्षज हैं। इस यहां पे भगवान को वो अधोक्षज के नाम से संबोधित कर रहे हैं। देख रहे हैं अधोक्षज मातुर अधोक्षक जाग से। अधोक्षज का क्या अर्थ होता है? अधोक्षज शब्द दो शब्दों से बना है, अधम और अक्षज। अधम का अर्थ है नीचे और अक्षज का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान। अक्षज इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जो हमने अर्जन किया। अधोक्षज का अर्थ है कि जिसके सामने इंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान तुच्छ हो जाता है, नीचे हो जाता है, उसको कहते हैं अधोक्षज। यानी कि अगर हमें भगवान को देखना है तो हमें वैसी ही आंखें चाहिए जैसे भगवान की आंखें हैं। अगर हमें भगवान को सुनना है तो हमारे वैसे ही कर्ण होने चाहिए जैसे भगवान के कर्ण हैं। हमने भगवान को अगर छूना है तो हमारी भी त्वचा वैसे ही होनी चाहिए जैसे भगवान की दिव्य त्वचा है, तभी हम भगवान को देख सकेंगे, भगवान को सुन सकेंगे, भगवान को स्पर्श कर सकेंगे, भगवान को सूंघ सकेंगे। हमारी इंद्रियां भी भगवान की तरह दिव्य होनी चाहिए, तभी हम भगवान को उन इंद्रियों से देख पाएंगे। अन्यथा भगवान अधोक्षज हैं, इन भौतिक इंद्रियों से बिल्कुल परे। तो यहां ब्रह्मा जी भगवान को अधोक्षज इसलिए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपको जानने का प्रयास किया अपनी भौतिक इंद्रियों से, और आप इन भौतिक इंद्रियों से परे हैं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। आपको मैं अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा जान ही नहीं पाऊंगा, तो आप हैं अधोक्षज। और भागवतम के दूसरे और तीसरे स्कंद में बताया जाता है कि भगवान ने जब भौतिक जगत की सृष्टि की रचना की तो उसमें सारे तत्व डाल दिए, पंच महाभूत और फिर मन बुद्धि अहंकार सब कुछ डाल दिए, लेकिन फिर भी वो सृष्टि की रचना नहीं हुई। सृष्टि की रचना तभी हुई जब भगवान ने स्वयं उसमें प्रवेश किया। तो सृष्टि की रचना भगवान ने की, और भगवान भागवत में बताते हैं एवं अहम एवासमम आग्रह कि मैं सबसे पहले मैं ही था। और क्योंकि भगवान सृष्टि से पहले हैं तो सृष्टि की किसी भी वस्तु के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, इसलिए भगवान गीता में 10वें अध्याय में बता रहे हैं नामे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षया अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम च सर्वथा, कि मुझे ना कोई देवतागण जान सकते हैं ना बड़े बड़े महर्षिगण जान सकते हैं, क्योंकि मैं ही उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। क्योंकि भगवान ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, तो ब्रह्मा जी भगवान के विषय में कैसे जान सकते हैं? साधारण भाषा में हम लोग अपने दादाजी परदादाजी के विषय में कैसे जान सकते हैं? वो हमसे पहले की जनरेशन के हैं। इसीलिए नारायणो परो व्यक्ता, नारायण जो है शंकराचार्य जी कर रहे हैं इस सृष्टि की रचना से परे हैं, वो पहले से ही थे, वो सृष्टि उन्होंने बाद में की, इसलिए सृष्टि की किसी भी इस भौतिक वस्तु के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान इस भौतिक सृष्टि से बिल्कुल परे हैं। देखिए जो इस भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है, चैतन्य चरितमृत वर्णन आता है जैसे एक बोरी में सरसों के दाने होते हैं, प्रत्येक सरसों का दाना एक ब्रह्मांड के समान है, असंख्य ब्रह्मांड। और ये जो ब्रह्मांड है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? चार मुख। ऐसे भी ब्रह्मा जी हैं जिनके आठ मुख हैं, बारह मुख हैं, सोलह मुख हैं, हजार मुख हैं, लाख मुख हैं, करोड़ मुख हैं। कल्पना कीजिए आप कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड होंगे। और ये सारा दृश्य भगवान ने ब्रह्मा जी को द्वारका में दिखाया था, अपने छोटे से कमरे में ब्रह्मा जी ने देखा था कि सारे के सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी आ रहे हैं, उन्होंने सबने मुकुट डाल रखे हैं, असंख्य सिरों वाले ब्रह्मा जी, असंख्य मुकुट, और सब पे सब प्रणाम कर रहे हैं, दिव्य ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, उस ध्वनि को सुनकर ही ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो उनके छोटे से चार मुख वाले ब्रह्मा जी को उनको ऐसा लगा कि मैं खरगोश हूं, इस सारे के सारे बड़े बड़े हाथी हैं। तो ये है, आप सृष्टि को सोचिए कितनी बड़ी सृष्टि है। अगर हम समझ लीजिए कि इस सृष्टि के केवल भौतिक जगत को ही लेते हैं, तो भौतिक जगत में ही कितने बड़े बड़े विशाल समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वन, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनकी आयु 3000 वर्ष है, जिनकी परिधि डायमीटर 300 फीट है, सकुआ पेड़ बोला जाता है उनको। और इन बड़े बड़े पेड़ों के सामने, बड़े बड़े पर्वतों के सामने एक बड़ा सा जो कहते हैं मिस्टर यूनिवर्स भी खड़ा हो जाए तो क्या लगेगा? चींटी के समान। तो ये तो केवल भौतिक सृष्टि है। उसके बाद भौतिक सृष्टि के इस पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य तारे हैं, उन तारों के बीच में आपस में एक डिस्टेंस बताया था बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। तो कितना विशाल ये ब्रह्मांड है, कितना विशाल। और उस ब्रह्मांड के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी जिनके चार मुख हैं, जिनके 12 घंटे हमारे हजार चतुर्युग के बराबर हैं, 12 घंटे हजार चतुर्युग के, और जिनकी रात भी हजार चतुर्युग के बराबर है। और गणना करेंगे तो उनकी आयु कितनी आ जाती है? 311 ट्रिलियन ईयर्स। कितने खरबों में हो गया प्रभु जी? कितने नील? 311 नील, 311 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की आयु है। और ये वो ब्रह्मा जी हैं जिनके हृदय में भगवान कृष्ण ने स्वयं ज्ञान प्रकाशित किया, सारे वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया। ऐसे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक मां के घर में पड़े हुए शिशु के समान हूं। मां के घर में पड़ा हुआ शिशु कैसा होता है? जैसा कि भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया गया है, बिल्कुल असहाय स्थिति में, मल मूत्र के बीच में पड़ा हुआ, चारों तरफ से कीड़े काट रहे हैं उसको, और बड़े दयनीय स्थिति में, बहुत ही दयनीय स्थिति में, मिजरेबल हेल्पलेस कंडीशन, ऐसी स्थिति ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरी स्थिति है। सारे ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के चीफ इंजीनियर आदि कवि, जिनके हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया, वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल अभिज्ञ, कुछ नहीं जानता, बिल्कुल असहाय और दयनीय स्थिति में हूं। तो जब ब्रह्मा जी की यह स्थिति है तो हमारी क्या स्थिति होगी? सोचिए, ब्रह्मा जी को छोड़ो, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई है? गर्भोदक्षाय विष्णु जी से। गर्भोदक्षाय जी विष्णु कहां से आते हैं? महाविष्णु जी से। और महाविष्णु जी के बारे में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में? यस्य निश्चित कालम अथ वलंब्य जीवंती लोम विलिजा जगदंडनाथ विष्णु महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामे। वो महाविष्णु कैसे हैं? वो एक सांस लेते हैं तो क्या होता है? असंख्य ब्रह्मांड निकल पड़ते हैं। देखिए, एक सांस लिया असंख्य ब्रह्मांड निकल गए, बड़े बड़े ब्रह्मांड, और सांस वापिस लिया ब्रह्मांड वापिस समाप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी की आयु 311 ट्रिलियन ईयर्स, महाविष्णु जी की एक सांस है। जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं, हमारी एक सांस से कई सैकड़ों हजारों कीटाणु मर जाते होंगे, और फिर हम सांस लेते हैं कई हजारों कीटाणु मर जाते होंगे। तो ब्रह्मा जी महाविष्णु जी के सामने कीटाणु के समान हुए, और उस कीटाणु की आयु 311 ट्रिलियन वर्ष, कल्पना कीजिए। और ये जो महाविष्णु हैं, वो कृष्ण की एक कला है, बस एक कला विशेष, यही सब कुछ नहीं है, एक कला है। तो कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कितने महान होंगे, कितने महान। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कितने महान होंगे, और ऐसे महान कृष्ण कैसे घूम रहे हैं, एक साधारण से ग्वाल बाल की तरह, हाथ में छड़ी लेकर, सर पे मोर पंख लगाकर, यहां बांसुरी डालकर, छोटे से बच्चे की तरह दौड़ भाग रहे हैं, गायों को चला रहे हैं। ये साधारण से कृष्ण जब खेलते हैं तो माता यशोदा उनको बुलाती है दोपहर के समय, चलो कृष्ण बलराम वापिस चलो, देखो सब कितने गंदे हो गए हो, नंद माँ के पिताजी आ गए हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो भोजन करो। और कृष्ण दौड़ते हुए उनके पास जाने लगते हैं, तो सारे ग्वाल बाल क्या कहते हैं, एक कन्हैया खबरदार जो गए, अब तुम्हारी बारी है खेलकूद में, अगर तुम गए तो हम तुम्हें दोबारा तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो ऐसे अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी डर जाते हैं और भाग के फिर अपने मित्रों के पास खेलना शुरू कर देते हैं। फिर यशोदा जी कहते हैं, कृष्ण सुना नहीं तुमने, चलो। तो बेचारे कृष्ण वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे ग्वाल बाल हैं, यहां यशोदा हैं, और फिर चुपचाप यशोदा जी उनको पकड़ के ले जाते हैं, ये देखिए। और वही कृष्ण है, माता यशोदा उनको बोलती है जब वो सामान उठा के लाओ, तो दौड़ के भाग भाग के जाते हैं, छोटे से कृष्ण सामान उठाने का प्रयास करते हैं, बहुत भारी है, उठता नहीं है, सारे के सारे ब्रह्मांड उनके उधर में है, उठता नहीं है सामान, यूं कर रहे हैं। फिर भागवत में वर्णन आता है, ऐसे ऐसे करते हैं अपनी बाजुओं को, यूं करके फिर उठाने का प्रयास करते हैं, और सब उठाने का प्रयास करते हैं, तो सारी गोपियां गाल बाल कितने प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उठा नहीं पाएगा, ये देखो देखिए। और फिर नंद महाराज के उनके जो उनकी पादुकाएं होती हैं उनको अपने सर पे उठा के ला रहे हैं, सर पे उठा के ला रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं। ये है कृष्ण, कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कोई अहंकार नहीं है। राजस्वी यज्ञ में सारे ब्राह्मणों के जूते उतारकर उनके पांव धो रहे हैं, हैं? महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन रहे हैं, सारथी बनने का अर्थ यही नहीं है ड्राइवर, चलो रथ चलाना थोड़ा अच्छा है, युद्ध समाप्त होने के बाद सारे घोड़ों को नहलाते थे, उनको साफ करते थे, यानी कि ये सेवा की बाकी क्यों असिस्टेंट है संभाल लेना, खुद कर रहे हैं सारा काम। तो ये है कृष्ण, ये है कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कोई अहंकार नहीं है, अपने आप को भक्तों के अधीन, अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन, पराधीन मतलब कोई स्वतंत्रता नहीं है। गोपियां कहती नाचो तो नाचना शुरू कर देते हैं, चुप हो जाओ चुप होना शुरू कर देंगे, कोई स्वतंत्रता नहीं है, अपने आप को भक्तों के पराधीन, ये है कृष्ण। वास्तव में देखिए हम लोग भी जो अहंकार दिखाते हैं तो उन्हीं लोगों का अहंकार दिखाते हैं कि कुछ बराबरी के हों। अगर हमारे पास कोई नई गाड़ी आई है मर्सिडीज, तो मर्सिडीज की चाबी हम किसी कीड़े मकोड़े को नहीं दिखाएंगे, देखो मेरे पास नई गाड़ी आई है, है ना। कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है या कोई बहुत शक्तिशाली है, वो अपने मसल्स किसी मक्खी को नहीं दिखाएंगे, देखो कितना शक्तिशाली हूं मैं, तो वो मक्खी मच्छरों के आगे अपना अहंकार नहीं दिखाएंगे। इसी ढंग से भगवान हमारे आगे अपना अहंकार नहीं दिखाते, क्या अहंकार दिखाएंगे तुच्छ जीवों के आगे भगवान। तो हम लोग मच्छर के समान, मच्छर भी क्या कोई है ही नहीं हमारा अस्तित्व भगवान के सामने, तो हमारे सामने अहंकार क्या दिखाएंगे, भगवान क्या दिखाएंगे, दया करते हैं भगवान, चलो आपकी पादुकाएं उठा लेता हूं, क्या चाहिए आपको वही कर देता हूं, और असाधारण बालक बन के घूमते हैं। और हम लोगों को देखो, थोड़ा सा कुछ मिल जाए हमें तो ऐसे फूल जाएंगे, ऐसे अहंकारित हो जाएंगे कि मुझसे बड़ा कोई आया ही नहीं, अहम ईश्वर, अहम भोगी, कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ मुझे चाहिए, आई हैव बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया, मैंने ये देखो इकोनॉमी बिल्ड की, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सब कुछ मैंने किया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी जो भौतिक जगत में हमारी उपलब्धियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, वो सारी प्रकृति का तीन गुणों का प्रभाव है, और जो आध्यात्मिक जगत में उपलब्धि होती है वो भी हमारी उपलब्धि नहीं होती, वो सारी की सारी गुरु वैष्णव की कृपा होती है। हमारा ना तो भौतिक जगत में कुछ अस्तित्व है, ना आध्यात्मिक जगत में, कुछ नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी हमारी लगता है कि कोई उपलब्धि है तो कृपा है, और भौतिक जगत में हम कुछ रैग्स टू रिचेस स्टोरी है कि झोंपड़ी से हमने महल बना लिया, ये प्रकृति के तीन गुणों का खेल है, हमारा कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, नथिंग, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, मोस्ट भी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। एक बार मैं मायापुर में गया था कुछ साल पहले, तो वहां पे मायापुर में जो दो पुजारी हैं, जननिवास प्रभु और पंकज आंगरे प्रभु, तो बहुत ही विनम्र भक्त हैं। आप सबने देखा है उनको, काफी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही विनम्र भक्त हैं। तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी हाउ टू बी हम्बल, विनम्र कैसे हुआ जाए? हम चाहते हैं आपसे ये प्रश्न उठता है कि हम्बल कैसे हुआ जाए, क्योंकि जब तक हम भक्ति में विनम्र नहीं है हम कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ा पूछा, प्रभु जी हाउ टू बी हम्बल, तो हंस पड़े। मैं क्यों हंस रहे हैं? कहते हैं व्हाट इज ऑप्शन, आपके पास विकल्प ही क्या है? व्हाट इज योर साइज, आकार क्या है आपका? 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, एक बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा तो आपका आकार है, और बोलते हाउ टू बी हम्बल। है कि हो कौन आप बताओ, कहां कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी और कहां आप 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से है और कोशिश कर रहे हो हम्बल होने की। और क्या मतलब इससे अलावा और क्या सुनना पड़ेगा, चाहिए आपको जानना चाहिए। कुछ अस्तित्व नहीं है, और वो इतने विनम्र हैं। देखिए कृष्ण को अपने पति कैसे आकर्षित किया। एक बार वो बैठे थे तो किसी भक्त ने लाकर, आप मायापुर में राधा माधव हैं और अष्ट सखियां हैं भगवान की, तो किसी भक्त ने लाकर उनको किसी एक सखी के हाथ से एक फूल होता है वो लाके दे दिया। अच्छा, उन्होंने राधा माधव के अष्ट सखियां हैं मायापुर में, तो एक फूल किसी सखी के हाथ में फूल था वो लाके दे दिया। तो उन्होंने सूंघा और बोला, अच्छा ये तुंग मंत्र के हाथ का है। उन्होंने नहीं, ये तुंग मंत्र के हाथ का नहीं है, ये इंदुलेखा के हाथ का है। तो भक्त बोला, हाँ प्रभु जी ये इंदुलेखा जी के हाथ का है। आप समझ रहे हैं, मतलब फूल को सूंघते ही जननिवास प्रभु जी ने ये जान लिया कि किस सखी ने पकड़ा हुआ था ये फूल, कितना निकट का संबंध है उनका भगवान के साथ। और वहां बहुत सी लीलाएं अर्च विग्रह ने, राधा माधव जी ने भी और नरसिंह देव जी ने बहुत लीलाएं की है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो विनम्र हैं। ओनली बाय ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस वी कैन अट्रैक्ट कृष्णा। अपने विनम्रता से और सहन शक्ति से हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। भगवान को क्या, भगवान के हम क्या तरी दिखाएंगे कि देखो मेरी नई गाड़ी देखो, मेरा मेरी मेरी विद्वत्ता देखो, मुझे इतने श्लोक याद हैं, मेरा कीर्तन देखो, कुछ नहीं। भगवान के अगर हम केवल विनम्र हो जाएं, भगवान उसी से आकर्षित हो जाएंगे, वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये प्रत्येक जीव की स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। और इस स्थिति से हम थोड़ा सा भी ऊंचा हो जाएंगे तो हमें अपने जप से छुट्टी लेनी पड़ेगी। We'll have to take leave from our chanting। अगर इस स्थिति से हम अपने को थोड़ा सा भी ऊपर समझेंगे तो घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र, ये है हमारी स्थिति। इससे अगर हम अपने को थोड़ा सा ऊंचा समझ लिया तो हम जप नहीं कर पाएंगे, वो चैंटिंग चैंटिंग नहीं होगा। तो हमें अपनी स्थिति में आना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। जितना हम भगवान की महिमा को जानेंगे उतना हम समझेंगे हम कितने तुच्छ हैं। भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान होना चाहिए। इसी तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हें बहुत सुंदर प्रार्थना की रचना की, और ये प्रार्थना ऐसी है, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भावानुभव भीत अहम इहि नंदम वंदे यस्यालंदे परम ब्रह्मा। बोले बहुत से लोग हैं जो इस भव सागर से, भौतिक जगत से भयभीत होकर श्रुतियों की, स्मृतियों की, पुराणों का अध्ययन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मैं ना तो श्रुति पढ़ूंगा, ना स्मृति, ना पुराण, मैं तो केवल नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेलते हैं। देखिए मैं तो उस नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में वो कृष्ण परम ब्रह्म सवान बच्चे की तरह खेलते हैं, मैं तो उनकी पूजा करूंगा। तो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को पसंद है, भगवान को आनंद आता है अगर हम भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की गुणगान करें, भगवान के भक्तों की पूजा करें। तो हम सबको अपनी वास्तविक स्थिति में आना है जो कि घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र। तो कैसे आया जाए उस स्थिति में, इस श्लोक से हम कुछ हमें हिंट मिलता है कैसे उस स्थिति में आ सकते हैं या उस स्थिति में हम क्यों नहीं रहते। देखिए यहां ब्रह्मा जी अपनी तुलना एक शिशु गर्भ में पड़े शिशु से कर रहे हैं और भगवान की तुलना एक माता से कर रहे हैं। और भगवान प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारा भगवान का संबंध माता और शिशु का है, लेकिन इसके अलावा भी ब्रह्मा जी और भगवान का भी एक संबंध है। वो क्या संबंध है? हाँ जी, गुरु और शिष्य का। ब्रह्मा जी शिष्य हैं और भगवान गुरु हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया और भगवान ने सृष्टि की रचना की सर्ग और ब्रह्मा जी ने विसर्ग किया, यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन। भगवान ने सारे के सारे रॉ मटेरियल ब्रह्मा जी को दे दिए और ब्रह्मा जी ने उन सारे रॉ मटेरियल को मिलाकर सृष्टि की रचना की और सारा ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। ज्ञान मिलने के बाद भी, सारे वेदों का ज्ञान मिलने के बाद भी, ब्रह्मा जी अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझने लगे और मैं देखता हूं इनको मोहित करके, इस ग्वाल बाल को भगवान समझ रहे अपने आप को, ये इसको मैं मोहित करके देखता हूं। ब्रह्मा जी अपने आप को कृष्ण से श्रेष्ठ समझने लगे और भगवान को मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी ढंग से हम सभी भक्ति में जुड़ते हैं गुरु और वैष्णवों की कृपा से, लेकिन भक्ति में आने के कुछ समय के बाद ही हम अपने आप को गुरु और वैष्णव से श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं, उनको साधारण व्यक्ति समझना शुरू कर देते हैं और फिर हम भी इसी ढंग से मोहित होंगे जिस ढंग से ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं। तो इससे हमें यह सीखना है कि हमें यह गलती नहीं करनी है। गुरु को हमें कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जिस ढंग से ब्रह्मा जी ने कृष्ण को साधारण मनुष्य समझा, उसी ढंग से हम भी गुरु को और वैष्णवों को साधारण मनुष्य समझते हैं। हम समझते हैं आई एम एन एक्सपर्ट, अब मैं एक्सपर्ट हो गया, मुझसे अच्छा और कोई वैष्णव नहीं है, जितनी अच्छी माला मेरी होती कोई नहीं कर सकता, पक्की साधना मेरी, मैं सबसे उत्तम हूं। जब ऐसा भाव हमारा रहेगा तो समझ लीजिए प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन, हमारा गिरना निश्चित है। बड़े बड़े भक्तों का, बड़े बड़े योगियों का इसीलिए पतन हुआ है कि वो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। हम किसी से भी श्रेष्ठ नहीं है, घास का तिनका जिसके ऊपर लोग रौंद के चले जाते हैं वैसे का वैसे ही वो पड़ा रहता है। उस तरह जब तक हम अपने आप को उस स्थिति में नहीं लाएंगे, हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। ये मनुष्य जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम भगवत धाम वापस जाएं। प्रति वर्ष हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी केवल एक उत्सव ही नहीं है, जन्माष्टमी केवल बड़ी बड़ी लाइनें, बड़ी भीड़ भड़का ही नहीं है, जन्माष्टमी मतलब केवल कलश सेवा ही नहीं है, जन्माष्टमी मतलब केवल पैसे का कलेक्शन करना ही नहीं है। जन्माष्टमी का बहुत गहरा अर्थ है, जन्म भगवान का अवतरण क्यों हुआ? भगवान हम सबको अपने धाम वापस बुलाने आए हैं, ये है जन्माष्टमी का उद्देश्य। तो जन्माष्टमी के दिन हमें याद आनी चाहिए कि भगवान का निमंत्रण अभी भी है हमारे लिए। इट्स एन ओपन इनविटेशन, दैट इनविटेशन इज स्टिल ओपन फॉर मी। भगवान का आमंत्रण पत्र अभी भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं इतना धूर्त, इतना निकृष्ट, इतना दूषित हूं कि मुझे भगवान के धाम जाने में कोई आकर्षण नहीं है। तो वो आमंत्रण पत्र कई कई युगों से पड़ा हुआ है, कई कई युगों से वो आमंत्रण पत्र ऐसे ही पड़ा हुआ है। हर द्वापर युग में भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी एक दिन में हमें आमंत्रण पत्र देके जाते हैं, भूल गए लीजिए दोबारा से आ रहा हूं, लो ये आमंत्रण पत्र, फिर हम उसको रख देते हैं साइड में, नहीं चाहिए अभी, बाद में आएंगे। तो जन्माष्टमी का मतलब बहुत गहरा है, भगवान जिस उद्देश्य से आए हैं हमने उस उद्देश्य को पूरा करना है, भगवत धाम जाना है वापस। ये केवल ऐसे उछल कूद का उत्सव नहीं है, झांकियां देख ली, लंबी लाइनों में खड़े हो गए, एक व्रत रख लिया, नहीं, व्रत रखना है तो व्रत लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ इसी जीवन में मुझे भगवत धाम वापस जाना है, वो है असली जन्माष्टमी। तो अगर भगवत धाम वापस जाना है तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि एक ही तरीका जाने का, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण बिना मान शून्य होना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रैक्टिकली बताया चैतन्य महाप्रभु ने, त्रिणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना। किस ढंग से निर्माण होना है? त्रिणादपि सुनिश्चयेन होकर। तो कैसे होंगे त्रिणादपि सुनिश्चयेन, कैसे होंगे बताइए? अपने कैसे ध्यान करेंगे प्रभु तुष्टा का, कौन हमें ध्यान करवाएगा? गुरु महाराज करवाएंगे। गुरु की आज्ञा का पालन कर 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 ही हम होंगे, अदरवाइज हमारा कोई मतलब कि कोई चांस ही नहीं है कि हम भगवत धाम जा सकें। देखिए सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है कलयुग के लिए, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और ये हरि का नाम हमें कौन देते हैं? गुरु देते हैं। और हमारी औकात देखिए, हमारी अभद्रता देखिए, हमारी दुष्टता देखिए, जिस गुरु के द्वारा हमें हरि नाम मिला उसी गुरु को हम साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। तो जिस गुरु के द्वारा हमें हरि नाम मिला, जिन वैष्णवों के द्वारा हम इस हरि नाम से जुड़े, अगर उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, तो किस ढंग से हमारी हरि नाम के प्रति रुचिपन होगी? रुचि उत्पन्न होगी ही नहीं। तो किस ढंग से हम अपना कल्याण कर पाएंगे? समझ रहे हैं ना बात को? गुरु ने हमें हरि नाम दिया, उसी एजेंट को हम साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, तो जो वस्तु देगा वो भी साधारण हम समझेंगे। तभी तो हम मंत्र जप रहे हैं। मंत्र के जपने से क्या होना चाहिए? त्रायते इति मना, मन से सारे दुख सारे कष्ट समाप्त हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं समाप्त हो रहे। चैंट एंड बी हैप्पी, एक झूठा स्लोगन लगता है। हैप्पीनेस ब्लिस आनंद आई नहीं रहा। क्यों? हम गुरु और वैष्णव को साधारण समझ रहे हैं। बताया गया सारे शास्त्रों में साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेन उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भिः, कि जो गुरु हैं वो साक्षात हरि हैं। अगर गुरु साक्षात हरि हैं, हरि से अभिन्न हैं, और उधर ये भी बताया गया अभिन्नत्वम नाम नामी, कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न हैं। आप समझ रहे हैं इक्वेशन? समझ रहे हैं? गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। अगर हम गुरु को साधारण मान रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण को साधारण मान रहे हैं, इसका मतलब नाम को साधारण मान रहे हैं। जब नाम को साधारण मान रहे हैं तो नाम अपनी दिव्यता कैसे प्रकट करेगा? नाम अपनी दिव्यता कैसे प्रकट करेगा? नाम दिव्य रहेगा ही नहीं। गोलोक के प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम आता है गोलोक धाम से, और हमें लगेगा भौतिक जगत का दिव्यता प्रकट होगी नहीं। अगर गुरु को साधारण मनुष्य मानेंगे तो भगवान और भगवान के धाम अभिन्न है। वृंदावन जाएंगे भी तो वृंदावन एक यूपी का एरिया लगेगा, गंदगी दिखाई देंगे। अगर गुरु को साधारण मनुष्य मानेंगे तो गोवर्धन जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, जो कृष्ण से अभिन्न है, वो एक साधारण पर्वत लगेगा। अगर गुरु को साधारण मानेंगे तो विग्रह एक पत्थर की मूर्ति लगेगी। तो कैसे हम प्रगति करेंगे? यही रहेंगे, परिक्रमा भी करेंगे गोवर्धन की, वृंदावन धाम भी जाएंगे, सोलह माला भी करेंगे, रोज आरतियां भी करेंगे, लेकिन जड़ गलत है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। ना हरि नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, ना विग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे, ना धाम अपना प्रभाव दिखाएगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बहु जन ने करी श्रवण कीर्तन तदो ही ना पाई कृष्ण पदे प्रेम धन, यही भौतिक जगत में बार 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 सड़ते रहेंगे। शिला भक्ति सांसवी ठाकुर महाराज तो इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना नारकीय मानसिकता है, और ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में सुअर बनते हैं। इतने कठोर वो शब्द बोल रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं आचार्य हैं, बता रहे हैं कि नारकीय मानसिकता है, नरकों में जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और यही बताया जा रहा है कि अगर हम अपने आप को वैष्णव कह रहे हैं तो वैष्णव करने का कहने का एक ही अर्थ है कि मैं गुरु का भक्त हूं। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, बोले कृष्ण से मेरा सीधा संबंध है, बांके बिहारी जी से मेरा सीधा संबंध है, मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भक्ति सांसवी ठाकुर महाराज कहते हैं दीज पीपल आर प्रिटेंडर्स, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स, दिखावा कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वैष्णव का अर्थ है जो गुरु और वैष्णवों के भक्त हों, वैष्णव की पूजा करते हैं, वो है वैष्णव। और ऐसे वैष्णव पूरे विश्व को बदल सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं आई डोंट नो कृष्णा, मैं कृष्ण को नहीं जानता, आई नो ओनली शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बस। और शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि मेरे गुरु इतने महान हैं कि उन गुरु के चरणों की एक रज का कण भी मैं किसी के सर पे डाल दूंगा, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, वो भगवत धाम वापिस चला जाएगा। मेरे गुरु के चरणों की रज में इतनी शक्ति है। तो जब तक हमारा ये अटूट विश्वास गुरु और वैष्णव में नहीं आएगा, सारा का सारा ये जन्माष्टमी महोत्सव, सारी की सारी ये भजन क्रिया जो हम कर रहे हैं, ये केवल दिखावा ही रह जाएगा, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये एक जड़ है, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा यानी गुरु और साधुओं में श्रद्धा, ये हमें लानी ही पड़ेगी, अन्यथा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जागना पड़ेगा हमें, अन्यथा ये कब तक ऐसा चलेगा। नाउ वी हैव टू वेक अप। और उसके बाद बताया जा रहा है कि गुरु की कृपा से ही हम इस त्रिणादपी सुनिश्चित हालत में आ सकते हैं। श्रीला भक्ति सांस सभी ठाकुर महाराज बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं कि कैसे आ सकते हैं। देखिए, कई लोग तो ये बोलते हैं, साधारण स्थिति तो ये है, नास्तिकवाद, कुछ लोग तो कृष्ण को मानते ही नहीं, बोले कोई भगवान वगवान नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। उससे थोड़ी बेहतर स्थिति है कि कृष्ण को मान लेते हैं, मंदिर आएंगे, हाथ खड़े करके, आंखें बंद करके, कैसे भी करके भगवान के सामने आएंगे, चले जाएंगे, और किसी साधुओं से भक्तों से कोई मतलब नहीं है, कृष्ण और मैं। उसके बाद थोड़ी और उन्नति होगी तो कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु तक आ जाएंगे, लेकिन गुरु की भक्ति कर लेंगे, लेकिन बाकी सब वैष्णवों को तुच्छ समझेंगे, कोई मेरे बराबर का नहीं है। तो भक्तिदास सेठ ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे और सारे जीवों को आदर नहीं देंगे, हम गुरु को साक्षात हरि नहीं समझ पाएंगे। जब तक को प्रत्येक वैष्णव को मैं अपने से श्रेष्ठ नहीं मानूंगा, प्रत्येक जीव को यथासंभव आदर नहीं दूंगा, मैं गुरु को भी साक्षात हरि का आदर नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो हमें डीलिंग्स करनी है, प्रत्येक वैष्णव को अपने से श्रेष्ठ समझना है, प्रत्येक जीव को यथारूप आदर देना है, तब जाके हम गुरु को साक्षात हरि का आदर दे पाएंगे, और तभी हम त्रिणादपि सुनिश्चयन की हालत में आ पाएंगे, और तभी हम निरंतर जप कर पाएंगे, और तभी हम भगवत धाम वापिस जा पाएंगे। प्रत्येक वैष्णव को अपने से श्रेष्ठ समझना है, प्रत्येक जीव को आदर देना है, तभी इस स्थिति से हम उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे। देखिए आचार्यगण कितनी मदद कर रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और ये केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इतना सुंदर भजन आप सबने सुना होगा, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे त्रिणापेखा अति हीना, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्प्रीहा हीना। गुरु की कृपा क्या होती है? गुरु की असली कृपा ये है कि करो ए दासे त्रिणापेक्षा अति हीना, कि हे गुरुदेव मुझ पे ये कृपा करो कि मैं अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा सहनशील, घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र बना सकूं, त्रिणापेक्षा अति हीना उससे भी ज्यादा हीन समझूं, और सबको सहनो, सकल सहने बल दिया करो, इतनी शक्ति दो कि मैं सहन कर सकूं, और निज मानस प्रिया हीना, अपने अमान की मेरे अंदर कोई स्प्रिया कोई इच्छा ना हो। तो ये हमें गुरु, ये है गुरु की असली कृपा। गुरु की कृपा से हम अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगे, लेकिन जो गुरु की दूसरी कृपा होती है वो कहलाती है कपटी कृपा। कपटी कृपा में गुरु हमें ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां हमें बहुत यश मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा, तो शिष्य फूल रहा, बहुत कृपा हो रही है, वो गुरु की कपटी कृपा है, क्योंकि हम कपटी शिष्य हैं, हम चाहते ही यही हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। हमें यश चाहिए तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में लाएंगे कि हमें यश मिलेगा, खूब मान खूब नाम मिलेगा, लेकिन कृष्ण से हम दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हम वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं तो गुरु हमें ऐसी सेवा देंगे त्रिणापेक्षा अति हीना, घास के तिनके से ज्यादा अपने आप को हीन समझेंगे, सकल सहने सबको सहन करेंगे, बल दिया करो शक्ति दो, और तब हम धीरे 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 अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगे। योग्यता बिचारे कुछ नहीं पाए तुमार करुणा सार, मेरे में कुछ भी योग्यता नहीं है, तुमार करुणा सार, सब का सब तुम्हारी करुणा तुम्हारी कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो इस ढंग से हम करेंगे तो हम कभी भी गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मान पाएंगे, और जिस ढंग से ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं हम मोहित नहीं होंगे। अगर हम गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मान रहे या हम गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं तो एक तरीके से हम सब भी मायावादी हुए। आप समझे, मायावादी क्या कहते हैं कि सब भगवान है, गुरु भी भगवान है, लेकिन हम कहते हैं गुरु सेवक भगवान है, सेव्य भगवान नहीं है, सेवा करने वाला भगवान है, भगवान के समान है। लेकिन अगर हमने गुरु को भगवान के समान नहीं समझा तो हम मायावादी हो जाएंगे। देखिए, ना हम गुरु को भगवान मान रहे हैं और ना अगर गुरु के भगवान के समान मान रहे हैं तब भी हम मायावादी हैं। कोई कह सकता कैसे? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि गुरु भगवान है तो वो मायावादी है, और अगर कोई व्यक्ति गुरु को भगवान के समान भी नहीं मान रहा तो भी वो मायावादी है। कैसे? वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि गुरु की कृपा से हमें भगवान मिल रहे हैं, और गुरु को साधारण मानेंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। दूसरा, गुरु को साधारण मान रहे हैं तो मतलब भगवान के प्रतिनिधि को साधारण मान रहे हैं तो भगवान को भी साधारण मान रहे हैं। इसका दूसरा तरीके का समझने का ये भी है, मायावादी लोग बोलते हैं कि कृष्ण निराकार है, है ना, ये जो विग्रह सामने खड़ा है ये तो एक कल्पना है, वैसे तो ना उसकी आंखें हैं, अव्यक्त निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक ऐसे हैं, उनकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कि एक वास्तविक हमारे सबकी एक टेंडेंसी रहती है कि कोई सामने रहे ना जो हमें कंट्रोल करे, मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, कोई अगर इस कृष्ण की आंखें हाथ पर होंगे तो मुझे वो नियंता के रूप में रखेंगे, मुझे कंट्रोल करेंगे, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे। तो इसी ढंग से गुरु भी हैं, लेकिन अगर उनको ये ईश्वर के समान हो गए तो मुझे सब कुछ मानना पड़ेगा, साधारण है तो मैं नहीं मानूंगा इनको, ताकि मुझे कुछ मेरी फ्रीडम मिलती रहे, मैं अपने आप को कृष्ण समझता रहूं, मैं अपने को परम भोक्ता समझता रहूं। तो इस ढंग से गुरु को कृष्ण का कृष्ण के समान स्तर ना देना भी मायावादी है, और मायावादी कृष्णेर अपराधी, तो भक्ति में लगे हुए भी हम कृष्ण के अपराधी हो रहे हैं। तो इसलिए इस मोह जाल से हमें बाहर निकलना है, सभी वैष्णवों को सम्मान देना है, सभी वैष्णवों को अपने से श्रेष्ठ समझना है, सब जीवों को सम्मान देना है, और गुरु को साक्षात हरि समझना है। इस ढंग से जब हम हरि नाम लेंगे तब हरि नाम अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, विग्रह अपने आप को प्रकट करेंगे, और गुरु की हमें कृपा मिलेगी, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हुए कृष्ण को अपने हृदय में ला पाएंगे। जन्माष्टमी का अर्थ है कि कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में हो, हमारे हृदय में हो, जिस तरह से देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए, हमारी चेतना में कृष्ण को प्रकट होना चाहिए। कितने वर्ष बीत गए, जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन कृष्ण कुछ प्रकट नहीं हुए, वही दूषित चेतना, वही भोगने की इच्छा, तो कब तक चलेगा ये? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो अब तो कर ले, अब तो करो, अथातो मतलब अब तो करो, अब तो जाग जाओ, अब तो, पहले तो पशु थे, पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, अब तो जाग जाओ, पशु जीवन से मनुष्य में आए, मनुष्य से वैष्णव बनने का प्रयास करो, अब तो कर लो, प्रभुपाद जी की शरण में आ गए, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? अथातो अब करो, ब्रह्म जिज्ञासा, जैनविन जिज्ञासा, ब्रह्म कृष्ण के बारे में अब तो जानो, ये दिखावा बंद करो, अब तो करो कुछ, ये तो फिर से मां के गर्भ में मल मूत्र कीड़े मकोड़े काटेंगे, फिर से दर्द सहेंगे, अब तो जाग जाओ, इतनी सुंदर अवसर, इतना सुनहरी अवसर है, अब तो जागो। तो ये है अष्टमी जन्माष्टमी, और ये श्लोक का है कि हमें कृष्ण को अगर जानना है तो गुरु को जानना पड़ेगा, गुरु से प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, अगर गुरु से प्रेम करना है तो वैष्णव समाज में वैष्णवों से प्रेम करना पड़ेगा, उनको आदर देना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा केवल दिखावा है और अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ वो इसलिए है ना, स्वाभाविक इसलिए है कि हर जीव अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहता है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं चाहता। वो चाहता कि मैं भोगता रहूं, अपने मन के हिसाब से चलो, मन आया तो ये भक्ति करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए जब गुरु और सीनियर वैष्णव हमें देखते हैं, हमें नियंत्रण करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत कष्ट होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का प्रभाव है बस। पूरा भौतिक जगत ऐसा है, सब में पूरी भौतिक रचना क्लेश, भौतिक जगत दुखालय, ये कचरा टॉयलेट मल के समान। भगवान ने भिन्न प्रकृति, जाओ निकल जाओ यहां से, भिन्न अलग सेपरेटेड नॉट इंटरेस्टेड। कूड़ा करके घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो ये भगवान की भिन्न प्रकृति है भौतिक जगत बाहर। तभी भगवान इतने दयालु हैं, सब कुछ के मालिक होते हुए वो कूड़े कटन में कीड़े मकोड़े घूम रहे, हम वो हैं मल के कीड़े, भगवान उसमें आ जाते हैं हमें निकालने के लिए कि चलो बाहर चलो 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 चलो। ऐसे भगवान इतने दयालु हैं, भगवान को बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें, भगवान आनंद में है, आराम से आनंद शेखर आराम से रासलीला लगे हुए हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल कूद रहे हैं, हमारे लिए आ जाते हैं यहाँ पे मल के अंदर कूड़े करकट के अंदर हमें बुलाने के लिए वापस चलो। वही असल कारण यही है, श्रीला भक्ति सांसठ महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत से हमें विरक्ति क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमें जो इस भौतिक जगत से बाहर ले जाने के लिए मैंने एजेंट भेजा है कृष्ण ने, उसको हम कृष्ण का प्रतिनिधि मान ही रहे, उसको तो हम एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं, जहां से थोड़ा सा महान पुरुष मान रहे हैं, मेरा से थोड़े से बेटर है बस, थोड़ा सा बेटर है, साधना अच्छी है थोड़े मेरे से बस, और कुछ नहीं, या मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, दैट्स ऑल। ये 10 साल हो गए इनको, 25 साल हो गए बस, और कोई नहीं मानते, तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। श्रवण तीसरा नाम अपराध क्या है, गुरु की अवज्ञा करना उन्हें साधारण मनुष्य समझना, तो नाम असर ही नहीं करेगा, शास्त्र असर नहीं करेंगे, विग्रह असर नहीं करेगा, कुछ असर नहीं करेगा, आपकी जड़ ही खराब है तो क्या, सब खराब हो गया बस। नहीं देखिए, तो भजन क्रिया है, ये तो साधना है, ये जब तो करते रहना है, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, जितना डिग्री में हम विनम्र होते जाएंगे उतनी डिग्री में ये जप अपने आप को रिवील करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप विनम्र होंगे तो जप अच्छा होगा, जप अच्छा होगा तो विनम्र होंगे। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा साधना और साधक जैसे ही है कि जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा साधना है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, रीइन्फोर्स करते हैं, जब अच्छा होगा तो हम विनम्र होंगे, विनम्र अच्छा होगा तो जब होगा, दोनों एक दूसरे को शक्ति दे रहे हैं। ऐसे गुरु गुरु नहीं है, गुरु है, उनको गुरु है नहीं ना, वो तो मतलब कि डिस्कशन में आने नहीं चाहिए, वो तो अब उनके लिए तो कुछ भी कर लो, अब उसमें थोड़ी है, वो गुरु हो गया ना, गुरु शिला प्रभुपाद बता रहे हैं आप शास्त्र के ज्ञान में कि गुरु कोई प्रमाणिक अप्रमाणिक नहीं होता। गुरु मतलब कृष्ण प्रमाणिक है तो उनका प्रतिनिधि प्रमाणिक, अप्रमाणिक गुरु मतलब शब्द ही नहीं है। अप्रमाणिक गुरु का अर्थ क्या होगा? गुरु है ही नहीं, वो चीटर है। होता आप वो तो कुछ भी मान लेना, वो तो वही बताया गया कि बहुत ही हम लोग वो दुर्भाग्यशाली जीव है। चीटर्स आर गेटिंग चीट बाय चीट। जानना पड़ेगा ना असली गुरु कौन है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए। अर्थात भाग्य नहीं, उनकी इच्छा भी ऐसी है। जो भाग्य और जो हमारी इच्छा है उन्हें उसी के अनुसार हमें गुरु मिलते हैं। और देखिए ये साधु संग करने का अर्थ ही यही है कि हम गुरु की शरण ग्रहण करें। अगर हम कई कई सालों से साधुओं का संग कर रहे हैं और फिर भी दीक्षा ग्रहण करने की कोई इच्छा जागृत नहीं हो रही, किसी भी गुरु प्रमाणिक गुरु के हम शरण में नहीं जा रहे, तो हम साधु संग नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। मनुष्य जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला। टाइम पास तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। टाइम पास क्या करना है? लोग बोलते क्या करें, टाइम पास कर रहा हूं, जो समय निकल जाए। अच्छा अच्छा, तुम समय क्या निकाल रहे हो? समय आपको खा रहा है, समय खाता जा रहा है हमें, एक एक समय खा रहा है हमें। आयु हरती वही पुनसान उद्यन अस्तन चनिया न सो, सूर्य के उदय और अस्त होने में समय में खा रहा है, निकल रहा है और कह रहे हम समय को पास कर रहे हैं। तो ये साधु संग करके गुरु की शरण में जाना है। मनुष्य और पशु का एक ही अंतर है, पशु के माता पिता होते हैं, मनुष्य के माता पिता होते हैं। पशु का कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, और मनुष्य जीवन में भी आध्यात्मिक गुरु ग्रहण नहीं किया तो व्यर्थ। तो अगर हम साधु संग कर रहे हैं तो हमें अब जल्दी से गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद जानना है ना, आज के श्लोक में यही तो जानना है कि क्या शास्त्रों में लिखा है, उसी महिमा के अनुसार अपने आप को चलाना है, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार अपने आप को अपने जीवन को चलाना है बस। तो उनकी बात तो कर ही नहीं रहे ना माता जी, हम दूसरों की चिंता बांधने करें, पहले अपनी चिंता करें। गुरु मतलब माता जी जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हो, अप्रमाणिक लोग तो गुरु है ही नहीं ना, झूठे गुरु, वो गुरु कहलाने नहीं चाहिए ना। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी भी चीज को कुछ बोल दे वो थोड़ी हो जाएगा। हाँ वो चीटर्स आर गेटिंग चीटेड, दोज वांट टू गेट चीटेड दे गेट चीटर्स। सस्ते गुरु चाहिए, सस्ते मिल जाएंगे। सब कुछ करते रहो और धन दो और भगवत धाम वापस जाओ बस, जैसे थोड़ी बात ठीक है। शिला भक्ति सेना स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि गुरु का संग करने का एक ही तरीका है, गुरु की सेवा करके। सेवा कीजिए गुरु की, सेवा मतलब वपु सेवा, वाणी सेवा, निर्देश उनके हमारे पास हैं तो करें। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, आई एम ऑलवेज फीलिंग दैट माई गुरु महाराज इज विद मी। बस अमेरिका में भी गए, अकेले महसूस नहीं किया। वैसी कोई बात ही नहीं है, गुरु के निर्देश हमारे पास हैं, उन्हीं का हम स्मरण करें, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जिए तो गुरु हमारे साथ रहेंगे हमेशा। ठीक, जब मौका मिले अवश्य करना चाहिए। प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभुपाद जी तो गुरु महाराज अपने भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से 6 या 7 बार ही मिले हैं मुश्किल से, फिर भी वो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज का मूड कितने ढंग से कैसे समझ गए, और कई लोग उनके जो शिष्य थे मठ में रहते थे उनके बीच में, वो उनके मूड को नहीं समझ सके। सीधी बात है कि प्रभुपाद जी अगर पहली बार उनको प्रणाम ही कर रहे थे तो देखते ही बोला कि व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखते ही पहली बार ही देखते ही इंस्ट्रक्शन दे दी। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज भी कमल नयन मंजरी हैं और शिला प्रभुपाद भी इज अ वैकुंठ मैन, वहीं से आए आध्यात्मिक जगत से, ये केवल लीला चल रही है। तुरंत पहचान लिया ये काम करना है बस। और इसके बाद उनके मठ के वासी बोलते थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को कि आप इनको बोलते क्यों नहीं कि मठ में आए, ज्वाइन करें। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या कहते थे, आई नो What he will do, I know. ये समय आने पर बहुत कुछ करेंगे। तो उनको मालूम था कैसे करना क्या करना है। ऐसा नहीं प्रभु जी, भक्ति में सब चीजें साथ साथ करनी, एक पैकेज है। ये थोड़ी कि प्रभु जी आजकल मैं वैष्णव का आदर कर रहा हूँ जब छोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं होगा ना। आप जब तक जप नहीं करेंगे हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, हम वैष्णव का आदर नहीं कर पाएंगे। जब तक वैष्णव का आदर नहीं कर पाएंगे हम जप अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोनों चीजें साथ साथ प्रयास करना है, सब कुछ प्रयास करना है, इकट्ठा ही करना है। ये भौतिक जगह थोड़ी कि फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास आएंगे फिर, ऐसे नहीं होगा। ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए बताइए। सबसे अच्छा तरीका है श्रद्धा बढ़ाने का कि जो आदेश मिले उसका चुपचाप वैसे पालन करें। जब हम आदेशों का पालन करते हैं तब हमें मालूम चलता है गुरु कितने महान हैं, तब मालूम चलता है। फिर और आदेश मिले और चुपचाप पालन करें माने और महान है, तो धीरे धीरे गुरु अपने आदेश और सख्त करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और उनकी महानता, गुरु अपने आप को छुपा के रखते हैं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए गुरु एक साधारण मनुष्य प्रतीत होते हैं और एक उच्च कोटि के भक्त के लिए गुरु एक उच्च कोटि की तरह प्रतीत होते हैं। तो निर्भर करता है कि हमारा कितना शरणागति है। तो श्रील प्रभुपाद भी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, हमें नहीं मालूम कृष्ण कौन है कैसे है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मान लीजिए कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, मान लो, और फिर उनकी आज्ञा का पालन करो। जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे अपने आप समझ जाओगे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। इसी ढंग से पहले मान लो गुरु साक्षात हरि हैं, फिर उनकी आज्ञा का पालन करो। जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि वो साक्षात हरि हैं। बिल्कुल वही बात है, जिसने हमें वो साधन दिया उसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जो साधन है वो कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं। हरि नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। तो सारी जड़ी यही है, हमारे भौतिक जगत में सड़ने की जड़ी यही है। हम लोग गुरु भोगी हैं, कृष्ण भोगी हैं, गुरु भोगी हैं, भोग रहे हैं हम गुरु को, इतनी शर्म नहीं आती हमें, भोग रहे हैं। यस बिल्कुल, तो इसलिए इस चेतना के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस चेतना में बने रहें और सेवा कर सकें। और ये भजनों को पढ़ना चाहिए, आपस में यही चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे को उत्साह बढ़ाना चाहिए। यही असली जन्माष्टमी है, अपनी चेतना को हम शुद्ध करें। तो हमें हमेशा अपने आप को उन भक्तों के संग में रखना चाहिए जो हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। जितना हम असत्संग करते हैं हमारे पर उनका वो प्रभाव आ जाता है और हम भूल जाते हैं अपनी असली बात को। गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटर है, करो ये, अच्छा वो हिम्मत नहीं हो रही, नो क्वेश्चंस, ऐसा नहीं। गुरु का बोला गया है एक बड़े भाई की तरह है वो, इज अवर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। बड़ी विनम्रता से हम पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रही तब भी तो जो सीनियर वैष्णव उनसे मदद लेकर पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की, नताय गौर प्रेम आनंदे
रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की।